हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 4 टेक्स्ट 42 सा उत्तम श्लोका रारविंदयो निषेवाय किंचना संगा लब्धाय तन्मन् परम निवृत्तम् आत्मनो मोहुर्दुसंगा विनाश्य माना शामं व्याधा सातमश्लोकपदारविन्दयो शैव किञ्चन सङ्गलब्धया धन्वन् परं निवृत्तम् आत्मनो मोहुसङ्गदिनस्य मनसमन्वयादा सातमश्लोकपदारविन्दयो निषेवय किञ्चन सङ्गलब्धया धन्वन् परं निवृत्तिम् आत्मनो मोहुसङ्गदिनस्य मनसमन्वयदा Mataji is
सह वह प्रहलाद महाराज उत्तम श्लोक पदारविंदयो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर जिसकी पूजा दिव्य स्तुति से की जाती है निसेवया निरंतर सेवा द्वारा अकिंचना उन भक्तों का जिन्हें इस जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता संग संगति लब्धया प्राप्त हुआ तन्मन विस्तार करने वाली पराम सर्वोच्च निर्वृतिम आनंद आत्मना आत्मा का मोह निरंतर दोसंग दीनस्य बुरी संगति के कारण आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन मनः मन को समम शांत व्यधात बना दिया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तात्पर्य, एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अब विचलित नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि भक्ति अहेतुकीय अप्रतिहता होती है, अतः प्रहलाद महाराज कभी भी हिरणकश्यपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके उन मित्रों के मन बदल जाते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मन को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाते हैं। हिंदी अनुवाद एक बार और। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे।
ओम ज्ञानंजना शाक्या चक्षुर्मीलितानेना तस्मै श्री चैतन्या मनोवैष्णव सावितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयादि। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगाजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्ता कांचना गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुतं प्रणमामि हरिभ्ये। वाञ्छा कल्पा सर्वस्य कृपा सिंधु भयेव च परितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण कृष्ण सप्तम श्लोक पदारविंदयो किंचन संगलब्धया तन्वन्पनम निवृत्तिम आत्मनमोहो संगदिनया मन समन व्यालात। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी के पूरी प्रजा देवताओं समेत उनको कष्ट पहुंचाया। हिरण्यकश्यपु वैसे तो हम उन्हें असुर के रूप में जानते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए हिरण्यकश्यपु भक्त है या अभक्त है, आप क्या बोलोगे? तो गहराई से देखा जाए तो भगवान के बड़े उत्तम कोटि के भक्त है, भगवान के द्वारपाल थे। जाए वे जाए जिन्हें ब्रह्मा जी के चार पुत्र जिन्हें हम कुमारराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था। अक्सर कोई श्राप दे आपको तो आप डर जाते हो, वो जाए वे जाए घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप श्राप देना है तो दीजिए, पर ऐसा श्राप दीजिए कि हम सदा भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान के जो भक्त है किसी स्थिति में डरते नहीं, जैसे कि परीक्षित महाराज को श्राप दिया। क्या था उनका श्राप? साधन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर साधारण व्यक्ति को ये सूचना मिले 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, घबरा जाते हैं हम, इसी तरह रोना शुरू कर देते हैं। पर परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने बड़े आनंद के साथ भागवतम का श्रवणम किया। तो देवता जो थे वो भी बड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की तपस्या इतनी गहरी थी। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु गए थे मंदारा पर्वत में, वहां वो खड़े हुए अपने पांव के अंगूठे के ऊपर हाथों को आकाश की तरफ रखकर। आप लोग योगा करते हो? प्राणायाम कुछ नहीं करते योगा कर। तो अगर आप योगा कर रहे हो और आपको कहा जाए खड़े हो जाओ हाथ ऊपर कर रख के, आप कितने मिनट रुक सकोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा? 1 घंटा भी नहीं। पर हिरण्यकश्यपु उस पोज में उस रूप में खड़े थे देवताओं के 100 सालों के लिए। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे बराबर है। तो 1000 सालों के लिए खड़े थे हाथ ऊपर और अपने पांव के अंगूठे के ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए, और इतने समय के लिए उन्होंने 1 बूंद पानी का भी नहीं पिया। आप 1 दिन निर्जल रखते हो निर्जल एकादशी में, आप सोचते बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। पर हिरण्यकश्यपु ने देवताओं के 100 वर्षों के लिए आकाश की तरफ हाथ ऊपर अंगूठे पाव के अंगूठे पर खड़े हुए और 1 बूंद पानी नहीं पिया। तो ये छोटी तपस्या नहीं थी। तो हिरण्यकश्यपु के तपस्या से सब दुखी हो गए थे। देवता गए भगवान के पास, देवताओं ने कहा, जब देवताओं को बड़ी समस्या आती है तो परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेते हैं। उन्होंने कहा हमें बचाओ, हिरण्यकश्यपु की तपस्या से हम सब तंग आ गए हैं। भगवान ने कहा घबराओ मत, जब ये हिरण्यकश्यपु मेरे भक्त प्रहलाद को छेड़ेगा तो फिर उसका वध हो जाएगा। जब देवताओं ने यह सुना तो उनका हौसला बढ़ गया, उन्हें लगा कि अभी उनका वध होने वाला है, समय का केवल समय का प्रश्न है। तो प्रहलाद महाराज के विषय में आप पढ़ते हो, प्रहलाद के 3 भाई थे, दूसरे शब्दों में प्रहलाद के पिता के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा बेटा है? तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही, उनकी कोई रुचि नहीं थी खेलने कूदने में, बचपन से उनकी रुचि थी किसमें? भक्ति में। जब दूसरे मित्र कहते थे आओ खेलो, प्रहलाद कहते थे नहीं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का बड़ा ऊंचा चरित्र है। तो आज के श्लोक में नारद मुनि क्या संदेश दे रहे हैं, इन श्लोकों का उच्चारण इस समय नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि क्योंकि प्रहलाद ने संग लिया था शुद्ध भक्तों का, जिनका भौतिक कार्य से कोई संबंध नहीं था। भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षणीय है कि भौतिक कार्य में उनकी रुचि नहीं लेती। ये नहीं कि हम ये दावा करें कि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भौतिक कार्यों में रुचि लें। और कहा जा रहा है साधु संग, प्रहलाद ने किन भक्तों की संगत ली जिनका भौतिकता में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए प्रहलाद में भी बड़ा उत्साह था क्या भगवान की सेवा के लिए। तो दूसरे शब्दों में इस श्लोक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं साधु संग के ऊपर। यहां कहा जा रहा है साधु संग के कारण, और किनकी संगत, जिनकी भौतिकता में कोई रुचि नहीं है। अगर हम उनकी संगत लें जिनकी भौतिकता में रुचि है तो हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का बनेगा। जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, व्यक्ति को हम पहचानते हैं किससे, संगत के माध्यम से। अगर आप अच्छे भक्तों की संगत लोगे तो अच्छा व्यवहार बनेगा, अगर आप कमजोर भक्तों की संगत लोगे तो कमजोर व्यवहार बनेगा। यहां कहा जा रहा है प्रहलाद के विषय में कि प्रहलाद महाराज उन भक्तों की संगत में थे जिनका भौतिकता में कोई रुचि है या नहीं, जिनकी रुचि नहीं थी, और क्योंकि उनकी संगत में थे उनका भक्ति का उत्साह भी ऊंचा था। तो साधु संग सर्वशासक आया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि आया। ये श्लोक कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है एक श्लोक चेते चेते में, कि अगर हम शुद्ध भक्तों की संगत में रहेंगे और लाभ मात्र का अर्थ है एक सेकेंड का चौदवा हिस्सा, आपकी घड़ी गिन भी नहीं सकती एक सेकेंड के चौदवा हिस्से को, आपकी घड़ी शायद एक सेकेंड ही गिन सकती है, एक सेकेंड का चौदवा हिस्सा नहीं। पर शास्त्र में कहा गया है एक सेकेंड के चौदवे हिस्से के लिए भी अगर आपको साधु संग मिले तो आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिलदेव भगवान की शिक्षा पढ़ते हो, कपिलदेव भगवान ने अपनी माता देवहूति के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी है कि भक्ति योगी एक उपाय है। क्योंकि माँ ने पूछा था, बेटा ये बताओ किस प्रकार से मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। मां बेटे ने कहा भक्तों की संगत में रहो, भक्तों के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित रहोगे तो आपके शुद्ध भाव होंगे, और अगर हम भौतिकवादियों के प्रति आकर्षित होंगे तो किस प्रकार का भाव होगा। बोले तो श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि बार बार भगवान के भक्त किस विषय की भीख मांग रहे हैं, साधु संग की। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति के कारण भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी गहरी तपस्या का पालन किया, भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने पूछा हे ध्रुव मांगो में से क्या वर चाहिए, और ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति में रहूं। क्या वर मांगा, ये नहीं कहा मुझे ये ऐश्वर्य चाहिए ये चाहिए, सिर्फ भक्तों की संगत। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी भगवतम में कहते हैं कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा शुद्ध भक्तों की संगत में रहूं। इस विषय में नारद मुनि भागवतम के चौथे स्कंद में हमें उपदेश देते हैं कि हम तीन प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। आप उनकी संगत प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति में आपसे आगे है, उनकी संगत प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति में आपके समान है, और उनकी संगत प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति में आपसे कमजोर है। जब आप उनकी संगत में हो जो भगवान के शरणागत हैं, जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, जब आपको उस प्रकार की संगत मिले तो हमें क्या होने जाना चाहिए? प्रसन्न हो जाना चाहिए। और इस विषय में भागवतम के दसवें स्कंद में एक उदाहरण दिया जाता है। जब पीकॉक मोर बादल को देखता है बारिश के मौसम में पहली बार, तो बादल को देखकर खुशी में नाचता है। हमारे किसान जब बादल देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर भागवतम में लिखा है कि कलयुग में बादल देखेंगे पर बारिश नहीं आएगी, क्योंकि लोग इतने पापी बन गए हैं। ये साल भी भारत में कई जगह में उन्होंने बादल देखे, सोचा बारिश आएगी पर एक बूंद पानी नहीं आया। तो जब हम उनकी संगत में हों जो हमारे से एडवांस हैं, हमें क्या हो जाना चाहिए? प्रसन्न हो जाना चाहिए। जब आप उनकी संगत में हो जो आपके बराबर हैं, तो हमें क्या? मित्रता का भाव करना चाहिए। मित्रता का भाव का अर्थ है ये भाव कि हम मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, ये भाव कि हम मिलकर भगवान के प्रचार करेंगे, ये है मित्रता। भौतिक समाज में मित्रता का अर्थ है तुम मेरा सहयोग करो इंद्रिया तृप्ति में, मैं तुम्हारा करूंगा, है ना। और अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं दे सकते तो हम जुदा हो जाएंगे और किसी और को खोजेंगे जो हमें संतोष करेगा। पर आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का भाव अर्थ है एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करना। जब आपसे कमजोर व्यक्तियों को मिलो, हमें क्या भाव प्रकट करना चाहिए? दया का भाव। दया का भाव है भगवान में भाव होना चाहिए, भगवान का संदेश आगे बढ़ाओ, भगवान का प्रचार आगे बढ़ाओ। तो नारद मुनि कह रहे हैं प्रहलाद महाराज क्योंकि उन्हें शुद्ध भक्तों की संगत मिली थी, उनके मन में और कोई विचार नहीं था, केवल एक ही भाव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सेवा करना, उनकी सेवा में जुड़े रहना। और हालांकि प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े, कई बार प्रचार के दौरान हम भक्तों को भी कष्ट सहना पड़ता है, पर जो कष्ट प्रहलाद महाराज को सहना पड़ा इतिहास में किसी को नहीं सहना पड़ा। उदाहरण के लिए उन्हें पहाड़ की चोटी से फेंका गया, झेलू सांपों ने घेरा, सागर में फेंका। जब सागर में फेंका लहरों ने प्रहलाद को उठाकर ऊपर ले आए, पहाड़ों से फेंका, हर स्थिति में प्रहलाद की सुरक्षा हुई। उनके पिता हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाए कहां से ये शक्ति आ रही है मेरे बेटे में, राखे कृष्ण माने के माने कृष्ण राखे के। परसों आप भक्तों ने महान संत हरिदास ठाकुर का तेरह भाव मनाया था, मनाया था आपने। तो हरिदास ठाकुर और प्रहलाद के जीवन में कई सिमिलैरिटीज है। हरिदास ठाकुर को भी ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है और प्रहलाद महाराज का अवतार भी कई स्थानों में माना जाता है। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा था, जब ब्रह्मा जी को सूचना मिली कि भगवान प्रकट होने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके मन में यह भय था कहीं मेरे मन में फिर घमंड नहीं आ जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वालों को और बछड़ों को चुरा कर छुपा दिया था। तो फिर उन्होंने देखा कि भगवान ने अपना विस्तार करके उनकी चापलूसी को हरा दिया, तो वो समझ गए ये उनमें झूठा घमंड था। तो उनकी इच्छा थी कि वो ऐसी स्थिति में जन्म लें जहां की बड़ी विनम्रता के साथ भगवान की सेवा कर सके। तो एक रूप से इसलिए उन्हें मुसलमान खानदान में जन्म दिया। दूसरा भाव ये है जो हमारे आचार्यों ने दिया है कि भगवान ये साबित करना चाहते थे कि जन्म खानदान पर निर्भर नहीं, वो निर्भर है आपके आचरण के ऊपर। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, जैसे आप जानते हो, जैसे आप नीची जाति का मान सकते हो, पर उनका जो आचरण था सबसे उत्तम कोटि का था। जब अद्विताचार्य ने पिता के लिए श्राद्ध करना था जिसमें ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, अद्विताचार्य ने क्या किया, क्या किया, हरिदास ठाकुर को दिया। हरिदास, आप क्या कर रहे हो, समाज क्या कहेगा, आपने मेरे जैसे नीच व्यक्ति को भोजन दिया है। अद्विताचार्य ने कहा, आपको खिलाना हजारों ब्राह्मणों के समान है। भगवान ये स्थापित करना चाहते थे, चाहे आपका जन्म नीची जाति में हो, पर अगर आपका आचरण शुद्ध हो तो आप असली ऊंची जाति के हो। भारत में आजकल हम सब ऊंची जाति नीची जाति के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। पर खलो शुद्र समबा, ध्यान से देखा जाए कलयुग में सभी शुद्र है, तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि सभी शुद्र कोई ब्राह्मण है ही नहीं। तो हरिदास ठाकुर को भी कितना कष्ट सहना पड़ा। पहले तो रामचंद्र खान की चापलूसी उसने वो वैश्या भेजी थी। वो वैश्या भेजी थी किस भाव से, बिना हरिदास को विचलित करने के लिए। रामचंद्र खान में बड़ा द्वेष था, इस हरिदास ठाकुर को इतना आदर मिल रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं उसका दर्शन लेने के लिए, मेरा कोई पूछता ही नहीं। तो उसने सब वैश्यों को बुलाया, पूछा कौन हरिदास को आकर्षित कर सक पाएगी, उसको जो ही नाम चाहिए मैं दूंगा। सब वैश्यों ने कहा हम तो नहीं प्रयास कर सकते, हरिदास महान संत है। पर एक जो सबसे खूबसूरत वैश्य थी उसने कहा ठीक है मैं उसे फंसा दूंगी, चिंता मत करो। और रामचंद्र खान ने कहा तुम सिपाहियों को साथ ले जाओ, क्योंकि जब तुम उन्हें रिश्ता में जोड़ोगे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वैश्य ने कहा नहीं मुझे आज अकेले जाने दो। हरिदास वो स्नान छोड़कर आगे बढ़ने वाले थे। हरिदास समझ गए ये वैश्य किस भाव से आई है और वहां रुक गए। और क्या परिणाम हुआ, उस वैश्य ने हरिदास वाला भगवान के नामों का उच्चारण 2 रात सुना और 3री रात में क्या भावी बन गए। तो ये है साधु संघ का प्रभाव। जैसे श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र ले गए सारे विश्व में और अपनी संगत से दूसरों को प्रभावित कर दिया इनाम अपनाने के लिए। तो ये जो राजा था, काजी था, वो बड़ा कड़क था। काजी ने कहा ये हरिदास हमारे धर्म की बेइज्जती करा रहा है, ये मुसलमान जन्म में खानदान में जन्म लेकर हिंदुओं का नाम ले रहा है, हिंदू भगवान का। तो वो राजा के पास गया, राजा ने हरिदास को निमंत्रण दिया। हरिदास ने राजा ने कहा तुमने इतने ऊंचे धर्म में जन्म लिया है, क्यों मृक्षों के द्वारा वो हरि का नाम ले रहे हो? हरिदास ने कहा एक ही भगवान है, चाहे आप मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं हरि नाम नहीं बंद करूंगा। तो अंत में क्या हुआ, उन्हें घसीटा गया 22 बाजारों से। 22 बाजारों में काजी के प्रतिनिधि हरिदास को घसीट कर ले जा रहे थे एक बाजार से दूसरे बाजार, पीट रहे थे हरि नाम रोको रोको रोको। अक्सर इन पीटने वालों का अनुभव था कि दूसरे या तीसरे बाजार तक जब पहुंचते थे वो व्यक्ति मर जाता था। तो यहां उन्होंने देखा कि वो इतनी तेजी के साथ पीट रहे हैं हरिदास को, वो हरिदास को बिल्कुल चोट ही नहीं आ रही, खून ही नहीं निकला, कोई निशाना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सारा कष्ट सह लिया। जैसे प्रहलाद को उसके पिता के प्रतिनिधियों ने कितनी प्रकार की सजा दी, पर हर स्थिति में भगवान ने वो सजा भुगत ली। अरे प्रहलाद को कुछ लगा ही नहीं। तो इसी प्रकार आप देखते हो हरिदास को घसीट कर ले जा रहे थे अलग अलग बाजारों में, हरिदास हरिनाम करते गए। फिर जब वो 22वें बाजार में पहुंचे, वो जो पीट रहे थे उन्होंने कहा अब तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें भेजा था इस आदेश के साथ कि तुम्हें मारा जाए और तुम्हें कोई चोट ही नहीं लग रही, कोई निशाना ही नहीं चोट का तुम्हारे शरीर में, तुम हरि नाम लेते जा रहे हो, अब तो काजी और राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हरिदास का स्वभाव देखो, भक्त का क्या भाव होना चाहिए। हरिदास ने सोचा मेरे कारण इन दो को मृत्यु की सजा हो जाएगी। तो हरिदास ने अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा सांस लेना बंद कर दिया और ऐसे लगा कि मर गए हैं। तो जो उनको पीट रहे थे वो बहुत खुश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, अभी हरिदास की मृत्यु हो गई। वो हरिदास को उठाकर ले गए राजा के पास। राजा को कहा अंत में 22 बाजारों में पीटने के पश्चात हरिदास का ध्यान हो गया। राजा ने कहा दबा दो उसके शरीर को मुसलमान विधियों के अनुसार। जो काजी था उसने कहा नहीं ये पापी है, ये तो मुसलमान हिंदू का नाम ले रहा है, इसको मुसलमान विधियों के अनुसार नहीं दबाएंगे हम, ये तो बहुत ऊंचा आदर है, इसके द्वारा वो तो भगवान के अल्लाह के पास चले जाएगा, इसको फेंक दो गंगा में, गंगा में फेंक दो इसको। तो जब वो हरिदास को उठाने गए इतना भारी शरीर था वो हिला भी नहीं सके, और फिर हरिदास की योगिक शक्तियों के द्वारा उन्हें गंगा में फेंक दिया। और जब गंगा में फेंका हरिदास ने क्या किया, तैर कर गंगा के पार जाकर एक कुटिया में बनाकर फिर उन्होंने जाप शुरू कर दिया। जब राजा को ये सूचना मिली कि यही हरिदास जिसके मरी हुई लाश को उसने देखा था आज फिर से भजन कर रहा है, तो राजा समझ गया कि ये कोई साधारण संत नहीं, ऊंचे कोटि का संत है। राजा ने आकर माफी मांगी। तो भगवान के जो भक्त हैं, कठिन स्थिति में होते हुए भी घबराते नहीं। ये नहीं कि हम कठिन स्थिति में हैं तो हम सोचें कृष्ण भक्ति का क्या फायदा, हमने भक्ति ली थी शांत जीवन बिताने के लिए, यहां तो समस्या ही समस्या है। एक समस्या हल होती है अगली समस्या आ जाती है, अगली समस्या हल होती है तो फिर एक और समस्या आ जाती है। तो हम समस्या से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? अगर कठिनाई का सामना करना पड़े भक्ति करते समय तो भक्ति छोड़ देनी चाहिए या नहीं? भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं या नहीं लेते? हमारे सामने कई उदाहरण हैं। भौतिक समाज में लोग फिल्मी कलाकार, क्रिकेट के कलाकार को भगवान अपना मॉडल बना लेते हैं, है ना? अपने घरों में बड़े बड़े पोस्टर लगा लेते हैं, फिल्मी कलाकार, स्पोर्ट्स कलाकार, पॉलिटिशियन। पर हम जो भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं, हमारा मॉडल कौन है? हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये महान संत हुए हैं जिनके उदाहरण से श्रील प्रभुपाद, जिनके उदाहरण से हम देखते हैं। ये नहीं कि भगवान के भक्तों की परीक्षा नहीं ली जाती, तो भगवान के भक्त उन्हें विश्वास रहता है कि अगर हम कठिन स्थिति में भी हैं हमें भगवान के शरणागत रहना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी का श्वास नहीं ठीक नहीं था और प्रभुपाद जी से भक्त कह रहे थे न्यूयॉर्क में, आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखकर कहने लगे, प्लीज डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। भगवान के लिए संघर्ष करना ये तो भाग्यवान व्यक्ति को मौका मिलता है, ये मेरे हाथ से मत ले लो। तो यार जब आप भगवान की सेवा में जुड़ते हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, कई बार बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, फिर उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। उल्टा जैसे महारानी कुंती कहती हैं, हे भगवान आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ। कोई प्रार्थना करता है कष्टों को बढ़ाने का? हम तो ये कहते हैं सुख दो, दुख को दूर करो, ये दूर करो, ये दूर करो। और कुंती देवी उल्टी प्रार्थना कर रही है, कहती है हे भगवान कष्टों को बढ़ाओ। क्यों कहती है कष्टों को बढ़ाओ? कहती है विपद संधिता शश्वत, इतना कष्टों को बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा मैं आपके चरण कमलों की शरण लेती हूँ, और जितने ज्यादा चरण कमलों का शरण लेती हूँ उतनी जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो जो भक्त है वो कठिन परिस्थिति में भी घबराता नहीं, और हमारे सामने कई प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहां कहा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति प्रहलाद को देखकर ही पवित्र हो जाते थे। दूसरे व्यक्ति देखते थे प्रहलाद को और पवित्र हो जाते थे, और प्रहलाद सब पर आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते थे। तो दूसरे शब्दों में जब आप आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हो, जब आप आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हो, तो इसका क्या परिणाम होता है? आप कई बार लोग पूछते होंगे आपसे, तो भक्ति में जुड़ गए कुछ मिल रहा है बदले में? तो क्या मिलता है बदले में? क्या मिलता है? क्या कौन बताएगा? भक्ति के बदले में क्या मिलता है? हाँ, असली आनंद। इस श्लोक के अनुसार जो भी प्रहलाद महाराज को देखता था उसमें भी भक्ति भाव प्रकट हो जाता था और इस माध्यम से प्रहलाद महाराज भक्ति का आनंद प्रदान दे रहे थे। पर भगवान ऋषभदेव की शिक्षा पांचवें स्कंद में है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो देवियम पुत्र का ये सत्वम, हे मेरे पुत्र तुम सब भगवान की खुशी के लिए तपस्या करो, तपस्या के बिना आध्यात्मिक परिवर्तन असंभव है। कई ढोंगी साधु बड़ा उपदेश देंगे पर तपस्या की चर्चा नहीं करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं अगर हम ईमानदारी से सेवा करें, अगर हम चार नियमों का पालन करें, अच्छी साधना रखें, हमें बदले में क्या मिलेगा, है ना। तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं, शुद्ध ये रस्मान हमें सो क्यों मनाता हूं। इस तपस्या के बदले आपको असली आनंद मिलेगा, नकली आनंद नहीं। सिनेमा देखना, क्रिकेट मैच देखना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब नकली आनंद देते हैं। असली आनंद मिलेगा। और असली आनंद का क्या है लक्षण, केवल बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा छेद दर्पण महाजनम आगे अनंत बुद्धि वर्धनम। तो अगर आप भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के शरणागत होने का माध्यम क्या है, विधियों का पालन करना, अच्छी साधना रखना। अच्छी साधना नहीं रखोगे, विधियों का पालन नहीं करोगे तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आप इन विधियों का पालन करोगे, नियमों का, तो बदले में क्या मिलेगा, आध्यात्मिक सुख। और ये जो सुख है केवल बढ़ते जाएगा। रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में कहते हैं तीन साधन हैं आनंद के। एक एक है ब्रह्मांड का चिंतन के द्वारा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप ये चिंतन को ये इस चिंतन के द्वारा तुच्छ आनंद प्राप्त हो सकता है। भौतिक कार्य द्वारा जो आनंद आता है किसी समय भी समाप्त हो सकता है। सच झूठ, आप अंबानी बन जाओ, टाटा बढ़ रहा बिरला बन जाओ, किसी समय भी समाप्त हो सकता है। पर आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा जो सुख आता है वो किसका क्या लक्षण है, वो केवल केवल क्या बढ़ते जाता है। तो प्रहलाद महाराज के शिक्षा से हम देखते हैं कि अगर प्रहलाद महाराज ने जो कष्ट था, हमें जो कष्ट सहना पड़ रहा है आज, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रहलाद की संगत से दूसरे व्यक्ति भी शुद्ध बन गए। तो हमें साधु संग में रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, सनातन गोस्वामी एक समय समाज के बहुत ऊंची स्थिति में थे, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो महाप्रभु ने उन्हें बड़ा गहरा उपदेश दिया और अंत में उन्होंने कहा ये इन सब उपदेशों में ये पांच कार्य सबसे महत्व है। तो सबसे पहला था साधु संग। तो हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम हमेशा भक्तों की संगत में रहें। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, प्रयास रहना चाहिए, मंदिर में आए, भगवान का उपदेश सुने, कीर्तन में जाए, भगवान का दर्शन लें, इस प्रकार भक्ति को भक्ति के मार्ग में बच सकोगे। तो हमें प्रहलाद महाराज से प्रेरणा लेनी है। ये नहीं सोचना ये तो प्रहलाद महाराज है, हम उनकी तुलना में तो कुछ नहीं है। हम उनकी तुलना में कुछ नहीं है, पर अगर हम इन महान संतों के आचरण का चिंतन करेंगे तो भगवान आपको भी शक्ति देंगे उसी प्रकार आगे बढ़ने के। जैसे आप देखते हो एक समय माया देवी आई थी, उसे सबको विचलित कर लिया था, ब्रह्मा जी को भी। आई थी हरिदास की परीक्षा लेने, पर माया देवी ने बड़े खूबसूरत रूप से हरिदास को आकर्षित करने का प्रयास किया, तो वो सफल नहीं थी। तो आप कहोगे तो ये उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार हरिनाम के सहयोग से हरिनाम ने हरिदास की सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा भी होगी अगर हम ध्यान पूर्वक हरिनाम का जाप करें। इसलिए हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि हम हरिनाम में रुचि लें। ये है महामंत्र। ये महामंत्र कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से आ रहा है। कली कली नाम रूप कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके नामों के माध्यम से। हम सबको क्या करना चाहिए? हरि नाम का जाप करना चाहिए नियमित रूप से 16 माला रोज, 4 नियमों का पालन साधु संग में और सत्यता से भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? कौन थे प्रति जान ही न में भक्त। हे अर्जुन, भगवान ने खुद नहीं कहा मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, प्रभुपाद जी ने कहा एक लेक्चर में, भगवान ने खुद नहीं कहा कि फिर लोग कहेंगे भगवान बोल रहे हैं ना। तो भगवान का जब भक्त बोले, हाँ भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, तो उसकी ज्यादा कदर रहती है। आप देखते हो सड़कों में एडवर्टीजमेंट, अमिताभ बच्चन कहता है ये खरीदो तो लोग खरीदते हैं। वो बनाने वाला भी कह सकता है क्योंकि वो किसी को पैसे दे रहे, तुम बोलो कि अच्छा माल है। तो इसी प्रकार तो ये उदाहरण निश्चित भगवान से मिला। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम सूचना दो कि मेरा भक्त जो है सदा उसकी सुरक्षा होगी। हमें जितने ध्यान से हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं उतनी तेजी के साथ चेत दर्पण मार्जनम प्राप्त होगा, उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी। अगर आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, वो है हरि नाम का जाप, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन और साधु संगत में रहना। और अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो बिना शंका के भगवान के शरणागत हो पाओगे। और कोई उपाय नहीं है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्ते वनस्ते वनस्ते एव गति नेता। हरि के नाम यही एक साधन। तो आप सब कैसे विश्वास है पूरा? हाँ, क्या है उपाय? हरि नाम करना। जितने श्रद्धा ध्यान से करेंगे उतनी तेजी के साथ इसका असर रहेगा। जैसे अगर आप डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार दवाई लो तो उसका प्रभाव पड़ता है, अगर आप मनमानी नियम से दवाई लोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का उपदेश है, हमें ध्यान पूर्वक जाप को सुनना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जोर से जाप करते थे, मन ही मन में नहीं, और जितने ध्यान से जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मेहनत निकलेगी। ये होना चाहिए हम सबका प्रयास। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, आई एम सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा।
असुरी भाव और तामसिक भाव में कुछ फर्क है कि एक ही है? और सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियलिस्टिक डिजायर भी सेम है कि डिफरेंट है?
समझ नहीं आया।
असुरी भाव,
हाँ,
असुरी भाव और तामसिक भाव दोनों एक ही है कि उसमें कोई भेद है? और सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियलिस्टिक डिजायर भी सेम है कि डिफरेंट है?
असुरी भाव, असुरी भाव तो अक्सर ये भाव होता है भक्ति के विरोध का भाव हो, पर यहां हम हिरण्यकश्यपु को असुर मानते हैं तो इनका असुरी भाव और कलियुग की प्रजा का असुरी भाव में अंतर है, क्योंकि हिरण्य का जाय विजय की इच्छा थी कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला कि जहां की वो सदा भगवान का स्मरण कर सकें। तो हालांकि ये असुरी भाव है पर एक और एक तरफ से भक्ति भाव है, पर आज की प्रजा में जो असुरी भाव है वो असली असुरी भाव है।
हरे कृष्णा महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी का और भक्त हरिदास ठाकुर जी के बारे में हम अक्सर सुनते आ रहे हैं और हम बहुत बार सुना है हमने, पर जब आपके मुख से सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है, हम लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हैं। ये आपके शब्दों की महिमा है, और जब आप साक्षात सामने हो तो मन में प्रश्न नहीं आते, जिज्ञासा आती है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार से थे जैसा आपने बताया और अक्सर बताते आ रहे हैं कि, और फिर उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और बहुत महान भक्त हुए। महाराज जी ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि उनके जिस जाति को जिस कास्ट को छोड़ के उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, फिर हमेशा उनके नाम के सामने साथ ठाकुर शब्द जुड़ा रहा। साथ ठाकुर शब्द एक पर्टिकुलर कास्ट को इंडिकेट करता है, फिर जिस कास्ट से वो बाहर आए फिर उनके साथ जीवन भर ये ठाकुर शब्द कहां से जुड़ गया?
ठाकुर हरिदास ठाकुर आदर कहा है, जब आप किसी संत को आदर देते हो तो ठाकुर भी बुला सकते हो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ये आदर की दृष्टि से उपयोग किया जाता है, और ये भी भूलना नहीं चाहिए हरिदास ठाकुर कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वैसे उन्हें ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, कई बार प्रहलाद का अवतार भी, पर ठाकुर शब्द आदर के लिए है। भक्तों की संगत के विषय में हमने तीन प्रकार की संगत का वर्णन किया था, कौन बताएगा तीन क्या है? जब आपसे कम ज्ञान के व्यक्तियों से मिले तो क्या भाव होना चाहिए? तो दया का भाव है आप लोगों में। दया का भाव का मतलब है हमें प्रचार में जुड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाया और बोला, हरिदास नित्यानंद घर घर जाओ और प्रचार करो, लोगों को बोलो कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है, और कृष्ण का नाम लो। और उनके आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद ने घर घर प्रचार शुरू कर दिया। हम भक्तों में भाव होना चाहिए प्रचार दया भाव का। और प्रभुपाद जी ने हमें क्या कहा है, सबसे उत्तम मार्ग दया का क्या है? ग्रंथों का वितरण। ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा प्रभुपाद जी ने हम सब पर सौंपी है, ये किस लिए है? पतितों का उद्धार करने के लिए। जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। अगर आज आप देख रहे हो भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसका एक कारण, मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। तो जैसे कि हम भाग्यशाली बने हैं, हमें दूसरों को भी भाग्यशाली बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ग्रंथों के वितरण की माध्यम से। ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है सबसे ऊंची सेवा है, वो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, हम सबको बड़े उत्साह से इस सेवा में जुड़ना चाहिए। आप सब जुड़े हो इस सेवा में, सब ये सेवा करते हो, तो कृपा करके उत्साह से ग्रंथ के वचन की सेवा में रुचि लीजिए। और थोड़े महीनों में ही, बस अभी 2 महीने बच गए, सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर में क्या होता है, तब से मैराथन की तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो ये साल अभी से सोचना शुरू कर दो, ये साल हमने ग्रंथ काम बांटने हैं, क्योंकि हर साल नए व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, है कि नहीं। तो आप सब सोचना शुरू कर दो कि ये साल भी हमने ग्रंथों को बांटना है। और प्रभुपाद जी कहते थे, जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो हम सब में ये भाव होना चाहिए सदा प्रचार का। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, कौन है जो सोते रहता है, जो खाना बहुत खाता है, कौन है। जब जितनी सेवा करोगे, जितना त्याग करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर हमारा भाव है हमें तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए बस, तो उतनी कृपा मिलेगी। अगर भगवान देखते हैं कि भक्त मेरी खुशी के लिए इतनी कठिनाई का सामना कर रहा है, तो भगवान उसको ऐसी प्रशंसा और बुद्धि देते हैं जिसके माध्यम से वो सदा भगवान की शरणागत रहे। आप सबसे निवेदन है कि आपने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है, पर बड़ी गंभीरता से स्वीकार करो कि आप सदा भक्ति के मार्ग में जुड़े रहो। तैयार हो इसके लिए, श्रवणम कीर्तनम करोगे तो उत्साह रहेगा। ओके, हरे कृष्णा।